हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। थोड़ा समय बीत गया था। अपनी बहन अंबिका को ब्लड डोनेट करने के बाद मानस अभी भी हॉस्पिटल बेड पर आराम कर रहा था। डॉक्टर बाहर निकले और उन्होंने सबको बताया, उनका ब्लड ट्रांसफ्यूजन पूरा हो चुका है, लेकिन उनकी हालत अभी भी नाजुक है। आप सब भगवान पर भरोसा रखिए और मरीज के लिए दुआ कीजिए। हमें नहीं पता उन्हें कब होश आएगा। डॉक्टर की बात सुनकर वेदांश तुरंत आगे आया और कहा, वो खतरे से तो बाहर है ना, उसकी जान को तो कोई खतरा नहीं है ना, उसे कुछ नहीं होगा ना डॉक्टर। बहुत ही उम्मीद भरी नज़रों से डॉक्टर की तरफ देखते हुए वेदांश ने ये सारे सवाल किए। डॉक्टर ने धीरे से अपना सिर हिलाकर कहा, हाँ मिस्टर ठाकुर, उनकी जान को खतरा नहीं है अब, लेकिन वो पूरी तरह से ठीक भी नहीं है, आपको खुद को संभालना होगा। इतना बोलकर डॉक्टर चले गए। उनके जाने के बाद इंस्पेक्टर सार्थक ने आखिरकार वेदांश से सवाल करना शुरू किया, वेदांश तुम्हारे खिलाफ हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन अक्षय को तुम पर शक है, और अगर सच कहूँ तो मुझे भी। हम सबको पता है अंबिका अपनी खुशी से तुम्हारे साथ नहीं रह रही थी, तो इन सब चीज़ों का कनेक्शन हो सकता है। सार्थक बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल लगने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वेदांश को पता नहीं क्यों बार बार बुरा लग रहा था। बार बार अंबिका की ऐसी हालत के पीछे उसे ही जिम्मेदार ठहराया जा रहा था, जबकि वो खुद भी अपनी गलती मान रहा था, लेकिन सीधी तरह उसने अंबिका पर हमला नहीं किया था और न ही उसकी जान लेने की कोशिश की थी। वेदांश ने बहुत ही कॉन्फिडेंस से सार्थक की आंखों में देखा और धीमी मगर सख्त आवाज में कहा, इंस्पेक्टर, मैंने अपनी पत्नी को जान से मारने की कोशिश नहीं की है। तुम चाहे जितनी बार भी मुझ पर प्रेशर डाल लो, लेकिन मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा। मैंने तुमसे पहले भी बताया है कि मेरे एक दुश्मन ने कल रात मेरे घर में घुसकर हमला किया था। उसका निशाना मैं था और गलती से ही सही, लेकिन उसने ही अंबिका को गोली मारी। तुम्हारे पास इसका कोई सबूत है? सार्थक ने उसे घूरते हुए कहा। हाँ, मेरे घर के सीसीटीवी कैमरों में पूरा हादसा रिकॉर्ड हुआ होगा। सिक्योरिटी रीजन से मेरे पूरे घर में कैमरे लगे हुए हैं, सिर्फ बेडरूम छोड़कर। और मैं तुमसे कोई झूठ नहीं बोल रहा इंस्पेक्टर, तुम जब चाहो घर जाकर वो फुटेज देख सकते हो, वेदांश ने धीरे से सिर हिलाते हुए कहा। सार्थक ने कुछ पल सोचा, फिर अपनी घड़ी की तरफ देखते हुए कहा, ठीक है, अगर ऐसी बात है तब तो सही है। वैसे भी मैं असली अपराधी तक पहुंचना चाहता हूं। मेरी किसी से कोई जाति दुश्मनी नहीं है, मैं बस अपना काम कर रहा हूं। चलो, अगर तुम्हारी बात सच भी है तो फुटेज तो मैं कभी भी चेक कर सकता हूं, लेकिन जब तक अंबिका होश में नहीं आती और हमें खुद नहीं बताती कि उसके साथ क्या हुआ, तब तक मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता। इंस्पेक्टर, जैसी तुम्हारी मर्जी, तुम चाहो तो उस फुटेज को अभी जाकर देख सकते हो, लेकिन मैं आप खुद के लिए और सफाई नहीं देने वाला। इसके अलावा मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। अंबिका को जब तक होश नहीं आता, मैं इस जगह से एक कदम भी नहीं हिलूंगा, वेदांश ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा। सार्थक ने वेदांश की ओर देखा, फिर धीरे से सिर हिलाया। उसका मोबाइल फोन रिंग हुआ और उसने कॉल पर बात की। उसे अपनी ड्यूटी पर लौटना था, लेकिन वो इस मामले को हल्के में नहीं ले सकता था। कॉल पर बात करने के बाद सार्थक ने वहां पर अपने दो कांस्टेबल छोड़े और उन्हें अच्छे से समझा दिया। उसके बाद अक्षय से बात करके वो वहां से निकल गया। सार्थक को किसी जरूरी काम की वजह से ना चाहते हुए भी वहां से जाना पड़ा, लेकिन वेदांश के लिए उसके मन में जो गुस्सा था वो एक पल के लिए कम नहीं हुआ था। अक्षय की आंखें भी गुस्से से एकदम लाल हो गई थीं। कुछ देर के बाद जब मानस को हॉस्पिटल रूम से बाहर निकाला गया, तो अक्षय ने किसी तरह समझा बुझाकर अपने छोटे भाई मानस को आराम करने के लिए घर भेज दिया था, लेकिन खुद वहीं बैठा रहा अस्पताल की बेंच पर और लगातार वेदांश को घूरता रहा। दोनों के बीच अब तक कई बार झड़प हो चुकी थी। वेदांश इस वक्त इन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहा था, लेकिन अक्षय के मन में उथल पुथल मची हुई थी। कुछ देर की चुप्पी के बाद अक्षय गुस्से में उठ खड़ा हुआ और वेदांश की ओर बढ़ते हुए बोला, क्यों कर रहे हो तुम ये सब वेदांश ठाकुर? क्या मिल रहा है तुम्हें हमारे परिवार को नुकसान पहुंचाकर? वेदांश ने उसकी ओर देखा। अक्षय की बातें कहीं ना कहीं उसे सही लग रही थीं, क्योंकि जाने अनजाने उसने अंबिका और पूरे परिवार को नुकसान पहुंचाया था या फिर उनका इस्तेमाल किया था। वेदांश के इस तरह से चुप रहने पर अक्षय का गुस्सा और भी बढ़ता जा रहा था, इसलिए अक्षय ने फिर गुस्से में कहा, तुम्हारी वजह से मैंने अपने प्यार अपनी मीशा को खो दिया। तुम्हारी वजह से आज मेरी बहन जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। क्या तुम यही चाहते हो कि तुम्हारे आसपास के सारे लोग मर जाएं और तुम अकेले बचो? लेकिन वेदांश ठाकुर, तुम हमेशा अकेले ही रहोगे। पता है क्यों? क्योंकि तुम किसी के भी साथ रहने के लायक नहीं हो। बस बहुत हो गया, तुम्हारा इतनी देर से मैं सुन रहा हूँ और कुछ बोल नहीं रहा हूँ तो तुमने शायद ये समझ लिया है कि मुझे बोलना ही नहीं आता है। वेदांश ने भी इस बार गुस्से भरी तेज आवाज में जवाब दिया। अक्षय काफी घबरा गया एकदम से वेदांश का ये रूप देखकर, और वो थोड़ा सा पीछे हो गया। अक्षय ने वेदांश की तरफ काफी ध्यान से देखा और फिर जैसे रिक्वेस्ट करते हुए कहा, जाने दो मेरी बहन को, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम चाहते क्या हो? वेदांश की आंखें धीरे धीरे लाल होने लगीं, लेकिन वो अभी भी अपने गुस्से पर काबू रखे हुए था। अक्षय ने और भी आगे बढ़ते हुए कहा, तुम उसे यहाँ से जाने दो, मैं उसे अपने घर ले जाऊंगा। हमारा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, हम कभी तुम्हारे रास्ते में वापस नहीं आएंगे। अगर तुम कहोगे तो हम शहर छोड़कर भी चले जाएंगे। वेदांश ने गुस्से से अपनी मुट्ठियाँ बांध लीं, उसकी आंखों में आग थी, लेकिन वो फिर भी शांति से बोला, भूलो मत, तुम मेरी पत्नी के बारे में बात कर रहे हो अक्षय, वो क्यों कहीं भी जाएगी मुझे छोड़कर? बस बहुत हो गया ये पति पत्नी और शादी का नाटक। मुझे पता है तुमने जरूर किसी मकसद से वो किया होगा, नहीं तो तुम्हारे जैसे आदमी बेमतलब किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता। वेदांश ने बहुत ही ज्यादा फीलिंग्स के साथ एकदम गहरी आवाज में बोला, तुम्हें जो समझना है समझो, मैं बोल चुका हूँ मुझे जो बोलना था, और मेरी बीवी यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। अगर कहीं जाएगी तो बस मेरे घर, जो कि अब उसका भी घर है। अक्षय ने गुस्से से उसकी ओर देखा, लेकिन वेदांश के कॉन्फिडेंस भरी बातों ने एक पल के लिए जैसे उसे चुप कर दिया हो। हॉस्पिटल के उस शांत माहौल में वो दोनों इस तरह एक दूसरे को घूर रहे थे जैसे कि एक दूसरे के जानी दुश्मन हों। अक्षय की आंखों में आंसू थे और वेदांश की आंखों में जिद। कुछ पल के बाद अक्षय ने धीरे से कहा, तुम कभी बदलोगे नहीं वेदांश, लेकिन याद रखना, अगर मेरी बहन को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। वेदांश ने कोई जवाब नहीं दिया, उसने बस अपनी आंखें बंद की और दिल से अंबिका के ठीक होने की प्रार्थना करने लगा, फिर आगे जाकर इमरजेंसी वार्ड के दरवाजे के पास खड़ा हो गया। वहां अंदर हॉस्पिटल बेड पर लेटी हुई अंबिका का चेहरा उसे नजर आ रहा था। उसके चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था, लेकिन फिर भी वेदांश को उसकी तरफ देखकर एक अलग सा सुकून महसूस हो रहा था। टू बी कंटिन्यूड। क्या अंबिका को होश आएगा? क्या सच में उसकी जान अब खतरे से बाहर है? और वेदांश को क्या फील हो रहा है अंबिका के लिए? क्यों वो इतना परेशान है? क्या वो खुद समझ पाएगा इन सब चीज़ों को? जानने के लिए पढ़ते रहिए ये स्टोरी, और प्लीज़ कमेंट भी ज़रूर करिएगा कैसा लगा आपको ये एपिसोड। अगर आप लोग स्टोरी से रिलेटेड कोई भी बात करना चाहते हैं तो हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है rsimra22।
यहाँ पर प्रोफाइल से भी आप हमें इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, और अगर आपको WhatsApp चैनल ज्वाइन करना है तो भी आप इंस्टा पर हमें मैसेज कर सकते हैं, हम आपको लिंक भेज देंगे।